कल हम बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम इस श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि ये श्लोक श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर श्लोक माना जाता है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन इस भावना से किया गया है, इतने सुंदर ढंग से किया गया है, जो कि कहीं और नहीं पाया जाता है। हालांकि ऐसे भगवान के सौंदर्य का वर्णन, उनके शरीर की कांति, उनके वैजयंती माला, उनके कानों में फूल, उनका मोर पंख इत्यादि, इन सब चीज़ों का वर्णन तो अन्य श्लोकों में भी आता है, अन्य भक्त भी करते हैं, परंतु गोपियों की जो भावना है वो निराली है। और साथ साथ गोपियों ने जो कृष्ण के बांसुरी बजाने का वर्णन किया है वो अन्य श्लोकों में भी नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने गोपियों की हृदय की बात प्रकट कर ली है। बात तो आई है सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से, लेकिन है वास्तव में गोपियों की हृदय की बात। गोपियां, जैसे कि आपको याद होगा, स्मर वेगेन विक्षिप्त मनः, उनका मन विचलित हो गया था स्मर के या उनके तीव्र प्रेम की वजह से, और इसलिए वो अशकन नहीं बोल पाए थे। तो काफी समय के लिए जब वो निर्वचन रहे, फिर धीरे धीरे से संभल गए और पुनः उनके हृदय का वेग उनको कृष्ण के बारे में बोलने के लिए प्रेरित करने लगा। और फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि गोपियों ने पुनः कृष्ण के सुंदर बांसुरी वादन का वर्णन आरंभ किया। और ये है छठा श्लोक इस दसवें स्कंद के 21वें अध्याय का, जिसका नाम है वेणु गीत। इति वेणुं रवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा व्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा व्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे राजन, जब व्रज की युवती स्त्रियों ने सभी प्राणियों के मनों को मोह लेने वाली कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी तो वे एक दूसरे का आलिंगन करके उसका वर्णन करने लगी। तो हम देख चुके हैं कि पहले गोपियां बोल नहीं पाई थी, लेकिन धीरे से जब अपने आप को उन्होंने संभाल लिया तो फिर उनके मन में जो कृष्ण लीला के ऊपर स्मरण था वो अपने जबान पे आ गया और आपस में उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया और कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बांसुरी के बारे में बोलने लगे। इति वेणु रवम, वेणु रवम मतलब वेणु की ध्वनि, श्रुत्वा सुनकर व्रज स्त्रियः सर्वा, सारे व्रज स्त्रिय अर्थात गोपी वर्णयन्त्यो, वर्णन करने लगे उसी वेणु रवम का, उस वेणु के ध्वनि का, भिरे भिरे अभिरे भिरे मतलब एक दूसरे का आलिंगन करते हुए। और ये वेणु रवम का गुण क्या है जिसका वर्णन गोपियां कर रही हैं? सर्वभूत मनोहरम, ये है कृष्ण के बांसुरी का गुण। क्यों? क्योंकि ये श्री कृष्ण का गुण है। भगवान श्री कृष्ण अपने सौंदर्य, वेणु, गुण, लीला, इन सब के माधुरी से सारे सृष्टि को मोहित कर लेते हैं, मन हरण कर लेते हैं। अनंत देव जहां रहते हैं उनके लोक से लेकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी के लोक पर सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से प्रभावित होते हैं। और जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सब जगह छोटे बड़े प्राणी, ऊंचे लोक के नीचे लोक के प्राणी सब प्रभावित हो जाते हैं। तो मनोहर ये शब्द का एक अर्थ है, मन का हरण करने वाला। किसका? सर्वभूत, सारे प्राणियों का मन हरण करने वाला, लेकिन खास करके गोपियों का मन हरण करने वाला। वैसे हम हमारे दैनिक अनुभव से भी जानते हैं कि किसी चीज के सौंदर्य को देखने के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा होती है, मत अलग अलग होते हैं। अगर कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति को वो ज्यादा सुंदर लगता है, दूसरे व्यक्ति को नहीं लगता। या कोई संगीत है, एक व्यक्ति को वो गाना पसंद आता है, दूसरे को नहीं लगता। जैसे कि डिस्को डांस, डिस्को म्यूजिक है, भक्तों को बिल्कुल पसंद नहीं, उसमें कोई रुचि नहीं लगती, कोई संगीत ही नहीं लगता ये। लेकिन जो लोग उसमें रुचि लगते हैं उनको लगता है कि बहुत मधुर है ये। तो सुनने वाले के ऊपर, देखने वाले के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहता है। हृदय में कौन से गुणों से वो व्यक्ति प्रभावित है ये निर्धारित करता है कि वो किस चीजों को देखना या सुनना पसंद करेगा, कौन से चीजों में उनको ज्यादा आनंद आएगा। जो लोग रजोगुण से प्रभावित हैं उनको इस प्रकार के जो आधुनिक काल के संगीत हैं या आधुनिक काल के जो दृश्य हैं वो पसंद आते हैं। जो सतोगुणी हैं उनको थोड़ा सतोगुणी संगीत, सतोगुणी दृश्य इत्यादि ये पसंद है। तो गोपियों को क्या पसंद है? गोपियां तो तमोगुण रजोगुण की बात तो दूर है, सत्वगुण की बात भी दूर है। और वो केवल एक विशुद्ध सत्व स्तर पर स्थित नहीं है, वो ऐसे एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हैं जो कि और कोई भी स्थित नहीं हो सकता है। गोपियों का स्थान निराला ही है। गोपियां इतने ऊंचे बढ़ गई हैं भक्ति के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, कि इनकी भक्ति की तुलना किसी और वस्तु से नहीं की जा सकती है। भक्ति के जीवन में क्रम से देखा जाए तो बहुत स्तर होते हैं। अभी हम लोग भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत भक्ति की कहां से होती है? आदौ श्रद्धा, थोड़ी बहुत श्रद्धा, थोड़ी बहुत भक्ति करने की इच्छा, थोड़ा बहुत भक्तों के प्रशंसा। हम देखते हैं कि भक्त लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, भले हमने मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता है, भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन केवल भक्तों को देखकर थोड़ा कुछ लगता है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बस ये हमारी भक्ति की शुरुआत है। या थोड़ी बहुत इच्छा हम रखते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कि अरे ये लोग जाकर मंदिर में भक्ति करते हैं, काश मैं भी जा पाया होता, मुझे भी करने की इच्छा है। ये थोड़ी बहुत इच्छा भी जागृत हो जाती है तो इसको श्रद्धा कहते हैं। ये वास्तव में श्रद्धा नहीं है, केवल श्रद्धा की शुरुआत मात्र है। अभी आगे चल के श्रद्धा को बहुत बढ़ना है, लेकिन ऐसे जब श्रद्धा हो जाती है फिर धीरे से भगवान इंतजाम करते हैं कि वो व्यक्ति भगवान के भक्तों को मिले और उनके संग में आए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो, फिर वो साधु संग में आ जाता है। जब भक्तों के समाज में आ जाता है तो भक्त लोग क्या कर रहे होते हैं? भगवान की सेवा। वो भगवान के बारे में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जैसे कि आप इतने सारे भक्त पीछे बैठ के माला बना रहे हैं। तो ये सब भजन क्रिया है। भजन क्रिया मतलब अलग अलग तरह से भगवान श्री कृष्ण को भजना। भजना मतलब उनकी सेवा करना। भज धातु, भज धातु का मतलब केवल ये नहीं है कि हम करताल मृदंग लेकर बैठ के जब संगीत में भजन करेंगे तो वो भज नहीं है। भज और बहुत कुछ है। जो संगीत में से करताल लेकर हम करते हैं वो तो भजन है ही, लेकिन जब हम हृदय से भगवान की सेवा करते हैं नाना प्रकार से तो उसको भजन कहते हैं, भजन क्रिया। तो वैधि भक्ति के अलग अलग अंग जो होते हैं इन सब को भजन क्रिया कहते हैं। वैधि भक्ति मतलब जो विधि के अनुसार किया जाता है। अमुक संख्या माला की करनी चाहिए, सुबह अमुक समय उठना ही चाहिए, ये दंडवत इतने सारे डालने ही चाहिए भगवान के सामने आकर, तो ये सारे विधियां हैं। तो ये भजन क्रिया के कार्य है। थ भजन क्रिया, और भजन क्रिया करते करते तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे से हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। किन चीजों से शुद्ध होने लगता है? अनर्थों से। अनर्थ मतलब वो चीज जो कि वास्तव में हमारे हृदय में आवश्यक नहीं है, जिनका हमारे हृदय में होने से केवल हमें तकलीफ होती है, ये हैं सारे अनर्थ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, नाना प्रकार की आसक्तियां, सूक्ष्म और स्थूल, ये सब अनर्थ हैं। तो भजन क्रिया करते करते अनर्थों का निवारण होने लगता है और हृदय शुद्ध होने लगता है। भगवान के प्रति आसक्ति धीरे धीरे से बढ़ने लगती है, श्रद्धा बढ़ने लगती है। और जब श्रद्धा बढ़ते बढ़ते भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति को पार करता है तो फिर क्या होता है? निष्ठा। निष्ठा के स्तर में पहुंचते हैं। निष्ठा मतलब जब भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो थोड़ा सुदृढ़ हो जाता है, उसको निष्ठा कहते हैं। फिर भक्त इतनी आसानी से डामाडोल नहीं हो जाता, माया के प्रभाव में नहीं पड़ जाता। जब तक कि वो निष्ठा के स्तर में नहीं पहुंचता, भक्त आसानी से डगमगा जा सकता है संसार के प्रभाव से। अभी घर में लोग बैठे हैं, दूसरे परिवार के लोग टीवी देख रहे हैं, वो भक्ति में रुचि नहीं रखते, हम भक्ति कर रहे हैं, शुरुआत में हमको लगता है हम तो कभी भी नहीं देखेंगे, मन को प्रभाव, मन को ऐसे हम दूषित नहीं करेंगे, लेकिन करते करते फिर हमारा मन भी आकर्षित हो जाता है, फिर हम भी टीवी देखने बैठ जाते हैं। ये है मतलब निष्ठा नहीं आई अभी तक। भजन क्रिया का कार्य चल रहा है, अनर्थों का निवारण नहीं हुआ है अभी तक, वो आकर्षण अभी तक है इन चीजों के प्रति। लेकिन जब श्रद्धा पक्का हो जाती है, पक्के होकर हम निष्ठा के स्तर में पहुंच जाते हैं। निष्ठा को भी पार करने के बाद रुचि का स्तर आ जाता है। रुचि मतलब वास्तव में भगवान की कथाओं सुनने के लिए, भगवान के नाम कीर्तन जप भजन करने के लिए, उनके लीलाओं को पढ़ने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए दिन भर एक रुचि जागृत हो जाती है, स्वाद। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा। जैसे जैसे हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं तो फिर धीरे धीरे से हम कथा में रुचि लेने लगते हैं। ये कपिल देव अपनी माता को बताते हैं श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में। सताम प्रसंगान, सताम मतलब जो भक्त सत के मार्ग में चल रहे हैं, प्रसंगान उनके संग में आकर, बड़े तीव्रता से उनके संग में आकर क्या ग्रहण करना, मम वीर संविधान, कपिल देव भगवान के अवतार हैं, इसलिए मम वीर कहते हैं, मेरे नाना प्रकार की लीलाओं के बारे में जब बातचीत करते हैं तो फिर क्या होता है, हृत्कर्ण रसायन कथा, धीरे धीरे से अपने हृदय को और कानों को ये कथा रसायन, ये रसमय लगने लगती है। तद जोशा जोशनाद आप अपवर्ग आशु वर्तमनी, फिर धीरे धीरे से जब हम रस लेने लगते हैं तो हमारी प्रगति जल्दी से होने लगती है। आशु किस मार्ग में, हम अपवर्ग वर्तमनी मतलब मुक्ति के मार्ग में प्रगति करने लगते हैं। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, फिर हमारी श्रद्धा बढ़ते बढ़ते भक्ति, फिर रति रुचि आक वैसे बढ़ने लगती है भगवान के प्रति। तो ये है क्रमशः हमारी प्रगति भक्ति मार्ग में। और इसकी परीक्षा हम कैसे ले सकते हैं कि हमारी रुचि कितनी जागृत हुई है भक्ति के कार्यों में, खास करके श्रवण कीर्तन के कार्यों में। फिर यह है रुचि, जब रुचि जागृत हो जाती है फिर आसक्ति आ जाती है। आसक्ति मतलब अभी भगवान को हम छोड़ नहीं सकते, बस पक्के, इतने पक्के हो गए कि किसी भी हालत में हम छोड़ नहीं सकते उनको, आसक्ति बोलते हैं उसको, दृढ़ आसक्ति। फिर आसक्ति के बाद आता है भाव, फिर अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते हैं हृदय में, जैसे कि कल भी हम वर्णन कर रहे थे, आंखों से आंसू आते हैं, पुलक मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाता है, ये सब विकार हैं। भाव और फिर प्रेम, शुद्ध प्रेम, जब व्यक्ति शुद्ध प्रेम में स्थित हो जाता है तो फिर उसके हृदय में कलमश नहीं रह जाते हैं। तो ये नौ स्तर हैं भक्ति के, इनमें से पहले सात स्तर जो हैं ये साधना भक्ति के हैं, इसमें साधना करना आवश्यक होता है, नाना प्रकार के नियमों का पालन करना होता है। और इस साधना भक्ति में भी शुरुआत में जो करते हैं उसे वैधि भक्ति कहते हैं, बाद में जो करते हैं उसे रागानुग भक्ति कहते हैं, लेकिन दोनों साधना भक्ति के अंग हैं। और फिर जो आठवां स्टेप है, कदम है, उसको भाव भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति, भाव भक्ति के बाद आखिरी जो नौवां कदम है प्रेम भक्ति। और प्रेम भक्ति ये शुद्ध प्रेम है। प्रेम भक्ति में भी कई स्तर होते हैं, आचार्य ने बताया आठ स्तर। देखिए कृष्ण प्रेम एक ऐसे वस्तु है जो निरंतर बढ़ती रहती है, यह है आध्यात्मिक जगत की पहचान। वहां सब कुछ अनंत है और निरंतर सब कुछ बढ़ते रहता है, कृष्ण प्रेम की आनंद की वृद्धि होती रहती है निरंतर। और इस तरह से जो अलग अलग रसों में भगवान की भक्ति करने वाले भक्त होते हैं वो भी अलग अलग स्तर पे पहुंचते हैं। प्रेमा भक्ति के अंदर जो नौवें स्तर है उसके अंदर जो आठ विभाजन है उसके बारे में चर्चा आज हम विस्तार में नहीं करेंगे, केवल इतना ही कहेंगे कि जो अलग अलग रस हैं, जैसे शांत रस है, जैसे दास्य है, वात्सल्य, ये अलग अलग स्तर पे पहुंचते हैं प्रेमा भक्ति में भी। जैसे दास्य रस है वो केवल प्रेम भक्ति के पहले स्तर में पहुंचता है, फिर जो सख्य रस है वो थोड़े ऊंचे पहुंचते हैं वात्सल्य रस के साथ, और जो माधुर्य रस के भक्त है वो और भी ऊंचे पहुंचते हैं। और भी ऊंचे पहुंचने के बाद फिर उसे काम कहते हैं। स्मर, हमने देखा ना, स्मर वेगम, स्मर उदय, पिछले तीन चार श्लोकों में हमने पढ़ा ना ये शब्द स्मर, और हमने कहा कि यह स्मर मतलब भौतिक कामदेव नहीं है, यह आध्यात्मिक काम है, मतलब प्रेम, शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति, लेकिन फिर भी साधारण शुद्ध प्रेम नहीं, असाधारण शुद्ध प्रेम, क्योंकि गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के दासों से, उनके सखाओं से, उनके माता पिताओं से भी ज्यादा तीव्र है। इसको काम कहते हैं, आध्यात्मिक काम। तो ऐसे काम से प्रभावित हैं गोपियां, तो हम कल्पना कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि कितना तीव्र उनका प्रेम है। तो बांसुरी तो सर्वभूत मनोहरम है, सारे प्राणियों का मन हरण कर लेता है, लेकिन जिस तरह से वो गोपियों का मन हरण करता है वो और किसी का मन हरण नहीं कर सकता। क्या ये कमी बांसुरी के आवाज में, ध्वनि में है कि वो सबका मन उसी तरह से हरण नहीं कर सकता? नहीं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्य। जैसे हम शरण जाते हैं भगवान के, वैसे भगवान हमारी ओर आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला है, मतलब जिसकी जैसी भावना है भगवान के प्रति भक्ति की, उस हिसाब से भगवान उनका सौंदर्य, उनके गुण, उनके बांसुरी वादन इत्यादि उनको प्रतीत होगा। हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई बड़े सुंदर ढंग से वन में जाते समय, तो गोपगणों को, उनके ग्वाल बाल मित्रों को बहुत अच्छा लगा। अपने एक दूसरे को देखकर बड़े आंख करके हंसने लगे, बहुत खुश हुए, मुस्कान उनके चेहरे पे आई कृष्ण की बांसुरी सुनकर। कितना सुंदर है, कितना अच्छा बजा रहे हो कृष्ण, बहुत आनंद आया उनको, उनका सख्य रस बढ़ गया। जब वरिष्ठ गोपियों ने, गोप गोपियों ने सुना वृंदावन में, तो उनका वात्सल्य भाव बढ़ गया। लेकिन इन दोनों के हृदय में वो प्रभाव नहीं पड़ा जो कि गोपियों के हृदय में पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काम है, इसलिए ये कामात्मिक भक्त कहते हैं, कहलाते हैं। ये तीव्र प्रेम केवल गोपियों के हृदय में, क्योंकि उनका प्रेम इतना अत्यंत गाढ़ा और तीव्र है, इसलिए ये बांसुरी का प्रभाव उनका मन इस तरह से हरण कर लेता है, इतना उत्पात उनके हृदय में पैदा कर देता है जो कि द्वारका की रानियां भी कल्पना नहीं कर सकती। हम सब साधारण जीवों की बात तो दूर है, लेकिन द्वारका की रानियां जो भी माधुर्य रस में स्थित हैं वो भी कल्पना नहीं कर सकती। ऐसा प्रेम उनके हृदय में जागृत हो जाता है और इस तरह से वो भगवान की लीलाओं का स्मरण करने लगते हैं। तो इस तरह से गोपियों का मन हरण हो जाता है और उनका मन केवल कृष्ण के पीछे जाता है। जिस तरह से अगर हमारे घर से हमारे कोई सामान चोरी हो जाता है, हम देख रहे हैं सामने से, तो हम उसका पीछा नहीं करेंगे व्यक्ति का। मान लीजिए हम रेलवे स्टेशन पर खड़े, हमारा सामान रख के एक आदमी सामान उठा के भाग गया, हम पीछा नहीं करेंगे उसका, तेजी से पीछा करेंगे। तो गोपियां अपने उन्होंने उनका मन जो है वो कृष्ण ने हरण कर लिया पूरी तरह से, और गोपियां पीछा कर रही हैं कृष्ण से, लेकिन अपने शरीर से नहीं। लेकिन वो क्योंकि वो नहीं कर पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि कृष्ण तो ग्वाल बाल मित्रों के साथ चले गए हैं, वो गाय चराने गए हैं, सख्य रस की लीला करने गए हैं, रासलीला का समय आया नहीं अभी तक। इसलिए कृष्ण ने गोपियों का मन हरण कर लिया और उनका मन जो है वो दौड़ते हुए कृष्ण के पीछे गया। कृष्ण के साथ हमेशा रहता था उनका मन। ये है मनोहर। वैसे आगे चल के हम भगवान श्री कृष्ण के रासलीला के बारे में भी सुनने वाले हैं कई आगे आने वाले अध्यायों में। उसमें भगवान श्री कृष्ण जब वंशी वट के तले खड़े होते थे और वहां खड़े रह के बांसुरी बजाते थे, तो सारे गोपियों को बुला रहे थे रासलीला के, आओ आओ मैं बुला रहा हूं, मेरी बांसुरी की आवाज उनको बुला रही थी। तो उस समय गोपियों का शरीर भी गया वहां, मन तो था ही लेकिन शरीर भी वहां पर गया। इसलिए गोपियां दूसरे गोपियों को भी वार्निंग देते हैं, चेतावनी देती हैं। स्मेरम भंगी त्रय परिचिताम शाचि विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकीर्ण गोविंदाख्याम हरितनुमित केश तीर्थोपकंठे मां प्रेक्षिष्ठस्तव यदि सखे बंधु संगे स्तिरंग। वो कह रहे हे सखी, वहां मत जाना और उस व्यक्ति को मत देखना। कहां नहीं जाना, किस व्यक्ति के पास नहीं, को नहीं देखना? गोविंदाख्याम, उसका नाम गोविंद है, हरितनुम बहुत सुंदर उसका शरीर है, हरण करने वाला है, ऐसा सौंदर्य है। इतः कहां खड़ा है वो? केशी तीर्थ उपकंठे, केशी तीर्थ केशी घाट पे खड़ा है वंशी वट के तले। और क्या कर रहा है वो कृष्ण गोविंद? स्मेरम, हल्की मुस्कान उसके चेहरे पे है। मृदु स्मित कहते हैं इसको संस्कृत में। मृदु मतलब सॉफ्ट, नरम, कोमल। स्मित मतलब मुस्कान। स्मेरम, यह हल्की मुस्कान उसके चेहरे पे है। भंगी त्रय परिचिताम, और उसका शरीर तीन जगह बका हुआ है, जैसे कृष्ण का होता है बांसुरी बजाते समय आपने देखा है, तीन जगह कहां बका हुआ होता है, कौन से तीन जगह में बका हुआ होता है श्री कृष्ण का शरीर? पहले अपने घुटनों पे, दूसरा कमर पे, तीसरा गर्दन पे। तो तीन जगह कृष्ण का शरीर बका हुआ होता है, इसलिए उनको त्रिभंग ललित, त्रिभंग मुरारी कहा जाता है। तीन जगह बका हुआ शरीर। और क्या कर रहे हैं वो वहां खड़े होकर? वंशी न्यस्त अधर सुधरा अपूरयन, वो अपने अमृत को अपने होठों से उस बांसुरी में बज के भर के बजा रहे हैं, वहां पे खड़े हैं। इसलिए मां प्रेक्षिष्ठ, वहां देखना नहीं, वहां जाना नहीं बिल्कुल। अस्ति बंधु संघे रंग, रंग मतलब आसक्ति, बंधु मतलब अगर तुम्हारे सगे संबंधी, कुटुंब के सदस्य इत्यादि, समाज, इनके प्रति अगर रंग आसक्ति है तो वहां नहीं जाना। क्यों? अगर वहां जाओगे तो ये सारी आसक्तियां भूल जाओगे, तुम्हारे सारा संसार का बंधन सब कट जाएगा। कौन तुम्हारा माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बंधु मित्र, ये सब खत्म हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये आदमी ऐसा करता है, इसकी आदत ही ऐसी है। इसलिए देखो वहां जाओ, खबरदार नहीं जाना वहां पर। वार्निंग दे रही है एक दूसरे को। तो ऐसे समय जब श्री कृष्ण वंशी वट के तले खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं, तब गोपियों का शरीर भी वहां चले जाता है। और उस समय ऐसे वो मैग्नेट है जिनको ऐसे आकर्षित करता है कि गोपियां जो भी कुछ कर रही होती हैं वो सब कुछ छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन अब तक कृष्ण लीला में वो समय नहीं आया, अब गोपियों का शरीर नहीं जाता है, अभी उनका मन जाता है, लेकिन उतने ही तीव्रता से। जो भी कुछ गोपियां कर रही हो ब्रज में, फिर भी बाहरी रूप से जो भी कुछ हो, वो मन तो उनका वहां पर है। मनोहर शब्द का और एक अर्थ भी होता है कि जो वस्तु, जो चीज, जो घटना किसी अन्य चीज में, अन्य वस्तु में, व्यक्ति में अद्भुत तरह के विचित्र परिवर्तन उत्पन्न कराए, वो भी मनोहर कहलाता है। तो परसों हम चर्चा कर रहे थे कृष्ण की बांसुरी किस तरह के परिवर्तन जागृत करता है दूसरों में, अद्भुत परिवर्तन करता है कि नहीं। जैसे कि नदियों को क्या कर देता है, बर्फ बना देता है, हालांकि उतनी ठंडी नहीं है। और फिर पत्थरों को, पहाड़ों को क्या कर देता है, पिघला देता है, हालांकि उतनी गर्मी नहीं है। मरे हुए वृक्षों को जीवित कर देता है हरित पान, हरे रंग के पानों से, पत्तों से। और जो सारे प्राणी हैं उनको स्तब्ध कर देता है, जो एक जगह खड़े हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ये है कृष्ण के बांसुरी का प्रभाव। तो ये अद्भुत परिवर्तन नहीं है? है अवश्य। इसलिए इसको मनोहर कहते हैं, और सबको, सबके हृदय में से अद्भुत परिवर्तन कर देता है। इसलिए कृष्ण के बांसुरी के बारे में वेणु रमम यहां पे क्या कहा गया है, सर्वभूत मनोहरम। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के वादन से, इस प्रकार से अगर गोपियां भी आकर्षित हो रही हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये बांसुरी की आवाज जो है, ये सर्वभूत मनोहरम क्यों है, ये बांसुरी में ऐसे गुण क्या है, ये ऐसे गुण क्यों आए, किस तरह से आए कि इसमें यह शक्ति आ गई कि सबका मन ऐसे हरण कर ले? तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इसका रहस्य भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख ऐश्वर्य में है। श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, सर्व आकर्षक। कोई भी व्यक्ति आकर्षक क्यों होता है? कोई भी व्यक्ति, संसार का भी व्यक्ति, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से लोगों को आकर्षित लगते हैं। क्यों लगते हैं? किसी के पास धन है तो लोग उसको आकर्षित होते हैं, उसके पास उसका संग लेना चाहते हैं। कोई लोग सुंदर होते हैं, कोई बुद्धिमान होते हैं, कोई शक्तिशाली होते हैं, कोई बड़े प्रसिद्ध होते हैं। तो अलग अलग चीजों की वजह से ये सब ऐश्वर्य है, और इन ऐश्वर्यों की वजह से लोग, दूसरे लोग इन व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं। इनको भग कहते हैं, भग मतलब ऐश्वर्य। लेकिन जिनके पास असीमित मात्रा में ये सारे भग या ऐश्वर्य विद्यमान हैं, उनको भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है, इनकी वजह से, इन ऐश्वर्यों के मालिक स्वामी होने की वजह से वो कृष्ण है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यश्च यशसहस्रिय ज्ञानम वैराग्ययोश्चैव सन्नम भग इतिंगणा। पराशर मुनि वर्णन करते हैं कि ये छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं जो कि भगवान के पास हैं। वो कौन से हैं, एक एक करके आप बताएंगे। ज्ञान, यश, वैराग्य, सौंदर्य, ज्ञान हो गया, ऐश्वर्य, श्री, शक्ति, छह। तो छह ऐश्वर्य हो गए भगवान के पास असीमित मात्रा में। अब आपसे हम एक प्रश्न करेंगे कि इन छह ऐश्वर्यों में से सबसे प्रमुख ऐश्वर्य कौन सा है भगवान का? अच्छा, आप में से कितने लोग वैराग्य कहते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। सबसे प्रमुख ऐश्वर्य भगवान का वैराग्य, ठीक है। और कोई भिन्न मत? सौंदर्य, कितने लोग भक्त कहते हैं सौंदर्य? अच्छा, और कोई भिन्न मत? और कोई है जवाब? नहीं, वैसे छे फिर हम खत्म कर देंगे। कौन सा? ज्ञान। कितने भक्त सोचते हैं ज्ञान है ऐश्वर्य? अच्छा, ये बताइए कि ब्रजवासी कौन से गुण से आकर्षित हुए थे? क्या उनको कृष्ण के ऐश्वर्य से कोई मतलब था? जब कृष्ण को उन्होंने कुरुक्षेत्र में देखा तो उन्होंने क्या कहा? ये रथ यात्रा का महोत्सव तो वही है, रथ यात्रा में क्या होता है? गोपियां वो कृष्ण को कुरुक्षेत्र से, मतलब द्वारका से ले जाकर वृंदावन ले जा रही है। ये सब सोने का मुकुट, ये सब नौकर चाकर, रथ, हाथी, घोड़े, पालखी, ये सब चीजें, रानी महारानी, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम तो वृंदावन के ग्वाल हो, गोप हो, तो हमें वो वृंदावन का कृष्ण देखना है, ये ऐश्वर्यशाली कृष्ण नहीं। तो ब्रजवासियों को ऐश्वर्य आकर्षित नहीं करता है। ज्ञान, जब कृष्ण ज्ञान देना कोशिश किया था कुरुक्षेत्र में, उद्धव ने भी दिया था, तो कल हम चर्चा कर रहे थे, राधा रानी ने डांटा कृष्ण, ये ज्ञानवान हमको नहीं चाहिए, तुम हो सकते हो बड़े ज्ञानी, हमको कोई परवाह नहीं उसमें। तो ज्ञान भी आकर्षित नहीं कर सकता। शक्ति, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लेकिन ये कोई देवता ने कुछ कुछ किया होगा, ये बच्चा क्या करेगा? हाँ, ये देवताओं ने विशेष कृपा की होगी, ये तो कोई कुछ ऐसे हुआ होगा, नारायण की असीम कृपा हुई इसके ऊपर। तो कृष्ण शक्तिशाली है, ये भी ज्यादा प्रभावित नहीं किया। वैराग्य, कृष्ण छोड़ के चले गए तो ये आकर्षित नहीं किया गोपियों को, बल्कि गोपियां तो कृष्ण को बोल रही थी कि अब ये हमको छोड़ के चला गया। आकर्षित होने की बजाय क्या, गोपी तो दुखी होने लगी, आकर्षित नहीं हुई। और यश, यश होगा, सब मथुरा के निवासी वालों के लिए अभी बहुत प्रसिद्ध है, द्वारका के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया, जाने दो हमको क्या है। तो ये प्रसिद्धि से भी आकर्षित नहीं हुए, तो रह गया कौन सा? सौंदर्य। एक ही चीज से ब्रजवासी आकर्षित हुए थे, वो है कृष्ण का सौंदर्य। ये श्री कृष्ण के छह ऐश्वर्यों में से प्रमुख ऐश्वर्य है, और अन्य सारे ऐश्वर्यों के स्रोत है, उद्गम है, और यही ऐश्वर्य सबको ज्यादा प्रभावित करता है, और खास करके ब्रजवासियों को, और ब्रजवासियों में से खास करके गोपियों को। और ये सारे जो ऐश्वर्य हैं वो सौंदर्य से ही आते हैं। अब ये सौंदर्य का एक विशेष गुण है, या उसका स्वभाव समझिए, उसका धर्म समझिए। भगवान के सौंदर्य की विशेषता क्या है? उनका मिठास, माधुर्य, कि उनका सौंदर्य ये बहुत मीठा है, अद्भुत ऐसे माधुर्य है, जैसे कि किसी और दूसरे सौंदर्य में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये सारे मधुर मिठास का मिठास है। सारे गोप जो भी सारे अद्भुत या मधुर चीजें हैं उनके माधुर्य का मिठास का सार है। अन्य जो भी कुछ मीठे चीजें हैं सारे सृष्टि में उनका मिठास कृष्ण के सौंदर्य से ही आता है। और ये जो सौंदर्य है, ये सौंदर्य का माधुर्य, ये जो मिठास है, वो कृष्ण के दिव्य शरीर में एक हल्के से तेज के रूप में प्रकट होता है उनके शरीर में, जो कि हल्के से जैसे उनके शरीर से सारे उनके अवयवों में दिखाई पड़ता है, जैसे सूरज के का हेलो, हेलो कहते हैं ना, क्या है हेलो को, क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब एक एक हल्का प्रकार सा तेज उसके इर्द गिर्द रहता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण के सौंदर्य का जो मिठास है वो इस प्रकार का एक हल्का सा तेज है जो कि अब उनके दिव्य शरीर से बाहर आता है, एक प्रकार का ग्लो, जो प्रकाश धीरे से जो निकलता है उनके शरीर से। तो ये उनके शरीर के सौंदर्य का मिठास है। और भगवान श्री कृष्ण का शरीर तो सुंदर है ही, बहुत मधुर है, लेकिन उनके शरीर का सबसे सुंदर भाग कौन सा है? उनका मुख, उनका मुखारविंद। उनका शरीर तो मीठा है ही, लेकिन सारे शरीर में भी उनका मुखारविंद, उनका मुख, ये सबसे ज्यादा मीठा है, मधुर है। और उनके मुख में भी सबसे मधुर, सबसे मीठा, सबसे सुंदर भाग कौन सा है? आंखें, नाक, क्या है, कितने लोग कहते हैं आंखें, कितने लोग और कुछ कहते हैं, किस चेहरे का और कुछ हिस्सा सबसे ज्यादा मधुर है? होठ, केवल होठ, हंसी, उनकी हल्की मुस्कान, मृदु स्मिता, उनकी हल्की मुस्कान सबसे सुंदर भाग है कृष्ण के मुखारविंद में भी। इसलिए कृष्ण कर्णामृत में बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा है, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधि मधुस्मृतमेतदहो, मधुरम 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 मधुरम। जब पहली बार वपु, कृष्ण के वपु के बारे में बोलते हैं तो मधुरम मधुरम कहते हैं दो बार, मतलब कृष्ण का वपु, मतलब उनका दिव्य शरीर मधुर मधुर है, मतलब बहुत मधुर है। फिर वदनम, उनका चेहरा, मधुरम मधुरम मधुरम, मतलब तीन बार मधुरम, मतलब बहुत ज्यादा मधुर है। और उनके मृदु स्मित, स्मित मतलब मुस्कान, मृदु मतलब हल्का, वो स्मिता मधुगंधी, जिसका गंध जो है वो मधु के समान है, वो कितना है? मधुरम 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 मधुरम, सबसे ज्यादा मधुर है वो। तो ये ग्रेड है, क्रमशः मिठास बढ़ता रहता है। तो आचार्य समझाते हैं कि एक ओर कृष्ण के सारे सौंदर्य का मिठास है और साथ साथ उनके जो मृदु स्मित है, ये दोनों को मिलाकर एक एक स्वाद आता है जो कि कर्पूर की तरह है वो स्वाद। और वो कर्पूर का स्वाद कृष्ण भगवान अपने होठों के माध्यम से, अपने अधर के माध्यम से वो बांसुरी में डालते हैं, और जब बांसुरी में डाल देते हैं तो बांसुरी अमृत से भर जाता है और वो अमृत को रख नहीं पाता, फिर वो अमृत बाहर ध्वनि के रूप में निकलता है। और इसलिए ये ध्वनि इतनी शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, क्योंकि ये ध्वनि कृष्ण के सौंदर्य का एक रूप है, कृष्ण के हल्के मुस्कान का एक रूप है, उनके सौंदर्य का भी सार है, उस बांसुरी में आता है, इसलिए ये मिठास अतुलनीय है, इसलिए बांसुरी के का प्रभाव इतना ज्यादा तीव्र होता है, और खास करके गोपियों के प्रति, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं। और ये वास्तव में एक अंतर है भगवान श्री कृष्ण और नारायण में। नारायण चतुर्भुज होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे, श्री रंगम नाम के गांव में गए थे जहां बहुत प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, तो चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण भक्त के घर में रहे थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट, और आगे चल के उनके लड़के षड गोस्वामी में से एक बने, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट का थोड़ा मजाक उड़ाया, कहने लगे कि आप तो विष्णु या नारायण की सेवा करते हो, चतुर्भुज विष्णु, आप उनको सर्वश्रेष्ठ समझते हो, तो ये बताइए अगर वो सर्वश्रेष्ठ हैं तो लक्ष्मी देवी उनको छोड़कर कृष्ण के पास क्यों आई? 10,000 वर्ष उन्होंने ये वृंदावन में जाके तपस्या क्यों किया कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए? तो उस समय नारायण ने, वेंकट भट्ट ने कहा, लेकिन नारायण और कृष्ण तो एक ही है, दोनों एक ही रूप है, भगवान तो एक ही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर एक है तो छोड़ने की क्या जरूरत थी, उधर ही रह जाते, एक ही है तो नारायण के पास रह जाते, कृष्ण के पास क्यों गए? तो इसके बाद एक बहुत सुंदर संवाद हुआ, वो संवाद आज सुनाने के लिए समय नहीं और कभी, लेकिन इसका सार ये हुआ कि कृष्ण भगवान ने उनको समझाया कि वास्तव में कृष्ण ही नारायण के उद्गम है, और कृष्ण में जो माधुर्य है, जो मिठास है, वो नारायण में नहीं है। वैसे बताया जाता है कि भगवान नारायण या विष्णु के पास 60 गुण होते हैं परिपूर्णता में, असीमित मात्रा में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में और 4 गुण होते हैं जो कि नारायण में भी नहीं होते, तो कृष्ण के 64 गुण हैं। वैसे तो अनंत गुण हैं, लेकिन थोड़े जिनकी संख्या अगर की जाए तो 64 प्रमुख गुण हैं। शिव जी के कितने हैं? 55, 55, और ब्रह्मा जी के 50, जो कि सबसे ऊंचे जीव हैं, और अन्य जीवों के 50 हो सकते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। ब्रह्मा जी के 50 हैं ज्यादा मात्रा में, शिव जी के 55 हैं प्राय संपूर्ण मात्रा में, लेकिन नारायण के 60 परिपूर्ण मात्रा में और कृष्ण के 64 परिपूर्ण मात्रा में। मतलब जो भी 50 गुण ब्रह्मा जी में जीवों में है वो शिव जी में है पूरी तरह से, जो 55 गुण, जो 50 गुण उनके पास है उसके अलावा 5 गुण शिव जी में है, और शिव जी के 55 गुण पूरी मात्रा में विष्णु में है, लेकिन विष्णु के और 5 गुण है जो शिव जी में नहीं है, और जो 60 गुण विष्णु या नारायण में है वो भी परिपूर्णता से कृष्ण में है, लेकिन कृष्ण भगवान में और 4 गुण हैं जो कि विष्णु में भी नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य चरितामृत में बताया है, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोलवारिधि अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल। सर्व अद्भुत चमत्कार, सबको विस्मित करने वाले चमत्कार की बात, भगवान श्री कृष्ण के पास क्या है? लीला कल्लोध वारिधि, वारिधि मतलब सागर, कल्लोल मतलब लहरें, किस चीज की लहरें? उनकी लीला, मतलब उनकी मधुर लीलाएं, उनके लीलाएं सागर के समान है, और उनके सागर की लहरें जो हैं ये इतना अद्भुत चमत्कार पैदा कर देती हैं। तो ये कृष्ण का पहला मधुर है, माधुर्य है, लीला माधुरी। लीला माधुरी मतलब जो अपने वो बाल लीला में करते हैं, वात्सल्य रस का स्वाद लेते हैं माता यशोदा नंद महाराज के साथ, वरिष्ठ भी कहलाता है लीला माधुर्य। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, अतुल्य मधुर प्रेम, मधुर प्रेम मतलब ये माधुर्य प्रेम, मंडित प्रिय मंडल, प्रिय मंडल मतलब उनके जो निकट के भक्त हैं जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, गोपियां। मंडितम मतलब कृष्ण भगवान हमेशा अपने इन प्रिय गोपी भक्तों से मंडित रहते हैं, सुशोभित रहते हैं, इसलिए उनका नाम है गोपी जन वल्लभ, गोपीनाथ। और ये अद्भुत मधुर प्रेम है, माधुर्य प्रेम, इसको क्या कौन सा प्रेम माधुर्य कहते हैं। तो दूसरा माधुर्य भगवान श्री कृष्ण का, पहला था लीला माधुरी, दूसरा है प्रेम माधुरी, मतलब वो ऐसे प्रेममयी गोपी भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। विष्णु के पास कोई गोपियां नहीं है, केवल लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती है, और न ही भगवान विष्णु कोई बाल लीला करते हैं उनके माता पिता के साथ में, न ही वो अपने मित्रों के साथ में खेलते हैं, ये केवल कृष्ण के साथ होता है। और आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रिजगन मनस आकर्षी मुरली कलकूजित। त्रिजगन तीनों जगत, त्रिभुवन भू भव स्वर्ग, तीनों को मनस आकर्षी, मन को आकर्षित करने वाले मुरली की कलकूजित, उनकी मधुर बोली वो सबको आकर्षित करती है। कृष्ण भगवान का ये तीसरा माधुर्य है, वेणु माधुरी। और फिर चौथा, असमान ऊर्ध्व रूपश्री विस्मापित चराचर। असमान ऊर्ध्व, असमान मतलब जो कि किसी उनके बराबर नहीं हो सकता, ऊर्ध्व मतलब उनके उनसे ऊपर नहीं हो सकता, रूपश्री उनके रूप का ऐश्वर्य मतलब उनके सौंदर्य का, विस्मापित चराचर, तो चर अचर प्राणियों को विस्मित करता है, ये रूप माधुरी कहते हैं। रूप माधुरी मतलब उनका सौंदर्य। तो ये चार माधुरी हैं, चतुर्माधुरी। कौन से हैं चार माधुरी आप याद रखेंगे, जिससे कि कृष्ण भगवान नारायण से भी श्रेष्ठ हैं, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। ये चार माधुरी हैं जिसकी वजह से कृष्ण भगवान के संबंध में जो भी कुछ है वो बड़ा मधुर बन जाता है। तो कृष्ण भगवान की बांसुरी का वादन वेणु माधुरी उनके विशेष गुणों में से एक है। तो इस प्रकार से गोपियां पूरी तरह से भगवान के वेणु वादन से प्रभावित हो गई हैं और आपस में बातचीत करना आरंभ करते हैं। लेकिन आचार्य बताते हैं कि गोपियां बड़े छिपे हुए ढंग से बात करते हैं। हमने चर्चा की थी परोक्षवाद का, आपको याद है परोक्षवाद? परोक्षवाद मतलब क्या है? इनडायरेक्टली बात करना, टेढ़ा मेढ़ा बात करना, सीधा नहीं बोलना। और गोपियों ने ऐसे क्यों बात किया था कृष्ण के बारे में? परकीय भाव है, लेकिन क्यों उनको इनडायरेक्ट बात करना था? डायरेक्ट सीधे कृष्ण का सौंदर्य के गुणगान क्यों नहीं कर सकते थे? सीधे करने से कृष्ण को कम आनंद होता है, ठीक है, कृष्ण भगवान ऐसे चतुर वर्णनों से प्रसन्न होते हैं, लेकिन और एक कारण क्या था? समाज के लिए, क्योंकि ये परकीय रस है। और बाकी सब बोलेंगे कि अरे तुम दूसरे पुरुष की स्तुति कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ये एक साधारण भौतिक नैतिकता के से मिलता जुलता नहीं था, इसलिए आपस में वो इस तरह से बोल रहे थे। लेकिन और एक भी कारण था कि जब गोपियां इस प्रकार से इनडायरेक्ट बोलती थी, अपने अपने भावनाओं को छुपा के रखती थी, तो वो सोचती थी कि हमें दूसरों को बताना नहीं चाहिए हमारी भावना, बताने से वो आनंद थोड़ा कम हो जाता है, वही हम ही उसका आस्वादन करते रहे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो शुद्ध प्रेम है, जिसको काम कहते हैं, जिसका वर्णन हम थोड़ी देर पहले कर चुके थे, वो शुद्ध प्रेम के भक्ति के अवस्था में वो काम जो है वो एक सांप के बराबर है। सांप कैसे चलता है? क्या सीधा चलता है सांप? कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो शुद्ध भक्त जब ऐसे ऊंचे प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसका व्यवहार, उसका बोलचाल भी इसी तरह से हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो गोपियों भी, गोपियों के हृदय में ये शुद्ध प्रेम का सांप था, तो कभी इनडायरेक्ट ऐसे बोलते हैं, कभी वैसे बोलते हैं, कभी अपनी सच्ची भावना को छुपाने लगते हैं। ये ओपन सीक्रेट है, मतलब एक खुला रहस्य है। सांप सबको मालूम है कि गोपियों के हृदय में कितना तीव्र प्रेम है कृष्ण के प्रति और केवल कृष्ण के प्रति, लेकिन फिर भी वो बात को छुपाना चाहती हैं, थोड़ा इनडायरेक्ट बोलना चाहती हैं। अगर वो कहना चाहती है कि श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, तो बोलेंगे देखो तमाल कृष्ण कितना सुंदर है, क्योंकि तमाल वृक्ष का रंग भी कृष्ण के बराबर है, इनडायरेक्ट बोलेंगे। तो इस तरह से गोपियां ऐसे बोलती है, आपस में भी जब बात करती है, सखीभ्य स्व सखीभ्य, पिछले श्लोकों में हमने देखा था, अपने सखियों के साथ बात करते हैं कि हे सखी देखो ऐसा है वैसा है, तो हालांकि थोड़ा बहुत अपने मन की बात व्यक्त कर रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं, थोड़ा इधर उधर छुपा के, और एक दूसरे का इनडायरेक्ट बात जो ऐसे सुन सुनकर उनको पता चलता है कि दूसरों के हृदय में क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा छुपा छुपा कर वो बोलते हैं। ये इस तरह से प्रेम का, शुद्ध भक्ति का ये एक स्वभाव है। इस तरह से गोपियां आपस में अपने इस बातचीत करते रहती हैं और कृष्ण का गुणगान करती रहती हैं। वैसे आखिरी शब्द यहां प्रयोग किया जाता है अभिरे भिरे। अभिरे भिरे मतलब आलिंगन कर लिया। जब गोपियां ऐसे बोल रही थीं तो बोलते बोलते जब भाव विभोर हो जाती थी तो एक दूसरे को आलिंगन कर लेती, लेकिन आचार्य बताते हैं कि इसका और एक भी अर्थ होता है कि गोपियों ने अपने ही हृदय में, हृदय के अंतःकरण में श्री कृष्ण को आलिंगन किया अपने हृदय से, अपनी आंखों से। यह दूसरा अर्थ है। और तीसरा कि उन्होंने कृष्ण के बांसुरी वादन को आलिंगन किया। बांसुरी वादन में उनको वही आनंद मिलता था ये जो कि कृष्ण के सौंदर्य से मिलता था, इसलिए कृष्ण के बांसुरी वादन में उनके सौंदर्य में कोई अंतर नहीं है। तो जब सुखदेव गोस्वामी इस पॉइंट पर पहुंचे अभिरे भिरे, तो उनके मन में भी यही शुद्ध प्रेम की लहरें उत्पन्न होने लगी, वो भी भाव विभोर हो गए और वो भी उठे। उन्होंने परीक्षित महाराज का हाथ पकड़ा। याद रखिए कि ये श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं और दोनों बैठे हुए हैं, तो परीक्षित महाराज को हाथ पकड़ के उठाया, हे राजन कह के, पिछले श्लोक में वो हे राजन कहे थे, दोबारा हे राजन कहने लगे और अभिरे भिरे आलिंगन किया गोपियों ने एक दूसरे को। इस बात से उनको स्फूर्ति हुई और उन्होंने परीक्षित महाराज को आलिंगन कर लिया और सारे ऋषि मुनि वहां एकत्र सब देख रहे थे। सुंदर दृश्य, भाव पर होकर कभी कभी एक भक्त दूसरे को भी आलिंगन कर लेते हैं। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी फिर ऐसे स्तब्ध हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, और फिर भगवान श्री कृष्ण जो कि उनके हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित हैं, उन्होंने इनके हृदय के अंदर जो तूफान चल रहा था उसको शांत किया, क्योंकि अगर तूफान शांत नहीं किया जाता तो सुखदेव गोस्वामी भागवत बोलते कैसे। फिर परीक्षित महाराज को तो बहुत कम समय बाकी था, अभी दशम स्कंद पहुंच गया है, प्राय श्रीमद् भागवत का अंत आ गया था, तो सुखदेव गोस्वामी को ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा बोलना था और वैसे भी गोपियों का गुणगान चल रहा है, तो कृष्ण भगवान भी चाहते थे कि सुखदेव गोस्वामी गोपियों का गुणगान जारी रखे। तो कृष्ण भगवान ने अंदर ही से सुखदेव गोस्वामी के हृदय के तूफान को का शमन कर दिया और फिर सुखदेव गोस्वामी ने आगे चल के वर्णन आरंभ किया। और अब सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट बताने वाले हैं कि गोपियों ने क्या बात की। अब तक गोपियों के श्लोक उन्होंने नहीं बोले, हालांकि गोपियों की भावना व्यक्त की थी, लेकिन अब डायरेक्ट जैसे है वैसे जो गोपियां बोल रही हैं वो बोलने वाले हैं। अब ये वेणु गीत में इस तरह से देखा जाए तो फिर 13 श्लोक हैं जो गोपियां खुद बोलती हैं और ये अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग दलों में बोले जा रहे हैं। पहला श्लोक जो अब हम पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं वो एक यूथ में हो रहा है। हम सुन चुके थे ना कि गोपियों के अलग अलग दल होते थे, समूह, उसके बीच में यूथ है, उसके बीच में उसके छोटा यूथ, ये दल जो है उसको गण कहते हैं। तो गोपियां अपने अपने यूथ में हैं और उनके साथ में ही वो बात कर रही हैं। तो एक श्लोक किसी एक दल में चल रहा है, फिर दूसरा श्लोक किसी दूसरे दल में बोला जा रहा है, तीसरा श्लोक तीसरे दल में बोला जा रहा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने इन सारे दलों के श्लोकों को एक कर दिया है 13 श्लोक में, एक के बाद एक के बाद एक, और इस तरह से ये वेणु गीत बना है। तो आइए अब देखते हैं कि बोर्ड जरा निकालेंगे नीचे।
अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशून् अनुविवेश यतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम्। यैर्वानि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः। सख्यः पशून् अनुविवेशयतोर्वयस्यैः। वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम्। यैर्वानि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्।
गोपियों ने कहा, सखियों, जो आंखें नंद महाराज के दोनों पुत्रों के सुंदर मुखमंडलों का दर्शन करती हैं, वे निश्चय ही भाग्यशालिनी हैं। जो ही वे दोनों अपने मित्रों से घिरकर तथा गवों को अपने आगे आगे करके जंगल में प्रवेश करते हैं, तो वे अपने मुखों में अपनी वंशियां धारण करके वृंदावन वासियों पर प्यार भरी चितवन से देखते हैं। जो आंखों वाले हैं, उनके लिए हमारी समझ में इससे बड़ी देखने की अन्य कोई वस्तु नहीं है। तो गोपियां बता रही हैं कि हमारे आंखों की परिपूर्णता है कि हम ये दृश्य देखें। कौन सा दृश्य? जो कि वहां है। आप में से कोई जरा कृपया वो पिक्चर निकालेंगे। कृष्ण अपने भाई बलराम और ग्वाल बाल उनके संग गायों को चराते हुए वृंदावन से जा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। ये दृश्य बहुत सुंदर है और गोपियां बोल रही हैं कि आंखों की परिपूर्णता यही है कि ये दृश्य हम देखें। मन ही मन में ये गोपियों का ध्यान है। वास्तव में गोपियों के इस वाक्य से हमें समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीलाओं का उनके रूप के ऊपर चिंतन करने के सिवाय और कोई श्रेष्ठ ध्यान या समाधि नहीं है। वैसे कई ऐसे योगी ध्यानी वगैरह होते हैं जो बोलते हैं कि इसके ऊपर ध्यान करो, उसके ऊपर ध्यान करो। वैसे एक बहुत प्रसिद्ध संस्था में एक थे, वो बोल रहे थे कि ऐसे कोई खास विषय नहीं, जो आपको विषय चाहिए उसके ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं। और एक बहुत प्रसिद्ध उनका वाक्य है कि आप एक पानी में चलने वाले भैंस के ऊपर भी आप ध्यान कर सकते हैं। मूल बात क्या है कि आपको ध्यान करना चाहिए, मन को केंद्रित करना चाहिए। लेकिन केवल मन को केंद्रित करना नहीं, किस चीज के ऊपर मन को केंद्रित करना चाहिए, किस व्यक्ति के ऊपर करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात है। कोई और संस्थाएं हैं, संस्था की निंदा नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पीछे जो गलत सिद्धांत है हम उसकी निंदा कर रहे हैं, किसी व्यक्तियों की नहीं, किसी संस्थाओं की नहीं। लेकिन जो गलत बात है जो बताई जा रही है, कितना लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रही है, उनको उनके जो वास्तविक श्रेय है, श्रेयस भलाई है, हित है, उससे दूर ले जा रहे हैं। और एक जगह है जहां लोग उनको केवल एक लाल बत्ती दिखाते हैं, बोलते हैं इसी के ऊपर ध्यान करते रहो। तो ऐसे अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन शास्त्रों का मत ऐसा नहीं है। और शास्त्रों में बताया गया है कि गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान की। उन्होंने बहुत सारे जन्मों में उन्होंने ध्यान, तपस्या, योग वोग जो भी सब किया था, इस बार उनको गोपियों का शरीर मिला है। तो अगर गोपियां कुछ कह रही हैं, हमें समझना चाहिए कि यह ज्ञान की परिपूर्णता है, टॉप मोस्ट नॉलेज, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शिखर ज्ञान का। हालांकि गोपियां अशिक्षित हैं भौतिक दृष्टि से। कहीं वर्णन नहीं आता कि वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था, कोई बीए बीएससी का कॉलेज था, ऐसे कोई वर्णन नहीं आता श्रीमद् भागवत में। पढ़ाई नहीं की थी उन्होंने, लेकिन जो ज्ञान वो दे रहे हैं, अपने हृदय की बातें जो व्यक्त कर रही हैं, वो ज्ञान की परिपूर्णता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में बताते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों के बाद जो वास्तव में ज्ञानवान होता है वो क्या करता है, माम प्रपद्यते, कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आता है। और मेरे शरण में आके वो क्या सोचता है, क्या धारणा लेकर आता है, वासुदेव सर्वम इति, कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, स महात्मा, इसलिए वो महात्मा है। सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है ऐसे महात्माओं को प्राप्त करना, केवल दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ, सुदुर्लभ। तो अगर वासुदेव कृष्ण सब कुछ है, गोपियों से ज्यादा इस बात को किसको मालूम है, गोपियों के लिए तो कृष्ण सब कुछ ही है, वासुदेव सर्वम इति, इस बात की जानकारी गोपियों को नहीं है तो और किसको है। सबसे ज्यादा तीव्रता से साक्षात्कार इस बात का गोपियों के है, इसलिए वो सबसे बड़ी महात्मा है। हालांकि महात्मा के वेश नहीं लगता उनको, इस तस्वीर में आपने देखा गोपियां तो साधारण ब्रज के गोपियां हैं, साधारण स्त्रियां हैं वहां की, तो कोई महात्मा का वेश तो उनका नहीं है, जटाएं नहीं है, ना गैरवे वस्त्र नहीं है, ना कोई डंडा नहीं है सन्यासी का, लेकिन सबसे बड़े महात्मा है ये। जितने भी तपस्या है, ज्ञान है, सेवा है, सब वो कर चुकी हैं पिछले जन्मों में, इसलिए अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ये सारे वेदों का सार है। क्योंकि केवल वेदों का सार नहीं, वेदों के सार का सार का सार है, सारम सारम समुद्रताम। बहुत सारा ज्ञान है सृष्टि में, उसका सार है वेद। वेद भी बहुत हैं, उसमें उपनिषद पुराण ये वो, और इन सब का सार है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में भी कई स्कंद हैं, कई तरह के भक्तों के बारे में, भक्ति के बारे में वर्णन आता है, कई स्कंद हैं, उनका सार है दशम स्कंद। दशम स्कंद में भी बहुत सारी लीलाएं हैं, द्वारका लीला, मथुरा लीला, उनमें से सार है व्रज लीला। व्रज लीला में भी बहुत सार हैं, बहुत सारे लीलाएं हैं, जैसे गोपों के साथ में, माता पिता के साथ में, उनमें से सार है गोपियों के साथ में लीला करना। तो ये गोपियों के साथ में या गोपियों का भक्ति जो है, प्रेम जो है भगवान के प्रति, वो सार के सार के सार का सार है। इसलिए इनके वचनों को हमें बड़े गंभीरता से लेना चाहिए, और कभी भी साधारण इस संसार के पुरुष स्त्री के संबंध से इसकी तुलना तो करनी ही नहीं चाहिए, तो बहुत दूर की बात है। हमने आपको बताया ना कि गोपियां किस स्तर में हैं, वो 9 स्तर बताए भक्ति के, तो शुद्ध प्रेम के भी सबसे ऊंचे स्तर में हैं, माता यशोदा नंद महाराज से भी ऊपर हैं वो। और वो कह रही हैं, उनके वचन से हमें हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान के लीला और सौंदर्य, उनके बांसुरी वदन इत्यादि के ऊपर ध्यान करना, ये ध्यान की परिपूर्णता है, परफेक्शन, यही समाधि है। समाधि का मतलब क्या होता है, जब हमारे सारे इंद्रियों को हम एक वस्तु पे केंद्रित करते हैं लंबे समय के लिए, उसको समाधि कहते हैं, बराबर है। तो कोई लोग निराकार के ऊपर समाधि में रहते हैं, कोई लोग अलग अलग चीजों के ऊपर रहते हैं, लेकिन ये समाधि सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा गोपियां अपने ही बातों से, अपने ही ध्यान से हमें बता रहे हैं। और आगे यहां पर बताया जाता है कि गोपियों ने अपने आप को सबसे ऊंचे योगी के रूप में सिद्ध कराया है। क्यों, कि जैसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगी नाम पि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्त तमो मतः, कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतर आत्मना, अपने अंतःकरण में जिन्होंने मुझे धारण कर लिया है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत, जो श्रद्धा भाव से अंदर ही अंदर अंतरात्मन मेरा स्मरण मेरा सतत चिंतन मनन करते रहता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये गोपियां सर्वश्रेष्ठ योगी है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि गोपियां कृष्ण को भूलना चाहती है, नहीं भूल पा रही है, कृष्ण के ऊपर ध्यान करना ध्यान भंग करना चाहती है लेकिन भंग नहीं हो पा रहा है, तो ये ऐसे योगी है। तो गोपियां अभी कह रही हैं कि जो हमारे आंखों में दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो सबके सामने होना चाहिए। अक्षण्वताम, अक्षण्वताम मतलब जिनकी आंखें हैं, फलम सच्चा फल मतलब सच्चा उसका मतलब सफलता उसकी क्या है, इदम मतलब ये क्या है, ये सुंदर मुखारविंद किनका, वक्त्रम वक्त्रम व्रजेश तनयो व्रजेश सुतयः, वक्त्रम मतलब चेहरा, तो किनका चेहरा, व्रजेश सुतय व्रज ईश नंद महाराज, सुतयो मतलब दो पुत्र, कौन है उनके दो पुत्र, कृष्ण और बलराम। तो हमारी आंखों की या जिनकी आंखें हैं मतलब सारे प्राणी जिनके भी आंखें हैं उनकी जीवन की या उनके आंखों की परिपूर्णता क्या है कि इस सुंदर मुखारविंद को देखना। और ये सुंदर मुखारविंद क्या कर रहा है, अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, बड़े प्रेम भरे वो अपने कृपा दृष्टि वो फेंक रहे हैं, मोक्षम छोड़ रहे हैं गोपियों के प्रति, वृंदावन के वासियों के प्रति, खास करके गोपियों के प्रति। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण अनुविवेश यतोर एक वन से दूसरे वन में चले जा रहे हैं गायों को लेते हुए, अनु अनु अनुवेणु जुष्टम मतलब वेणु को हाथ में लिए बजा रहे हैं गोपाल अन्य गोपालों के संग में, तो जाते जाते कटाक्ष अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, वो धीरे से उस तरफ भी देखते हैं, यहां आगे चल रहे हैं गायों को चरा रहे हैं ग्वाल बाल चल रहे हैं लेकिन थोड़ी टेढ़ी नजर उधर भी है, उधर देख के कटाक्ष मोक्षम छोड़ रहे हैं। तो ये जो सुंदर दृश्य खास करके जो देख रहे हैं ये गोपियां बोलती कि ये दृश्य आंखों के लिए सबसे श्रेष्ठ दृश्य है। और आगे बोलते हैं न परम विदामह, इससे श्रेष्ठ कोई दृश्य नहीं है देखने के लिए। अगर जिस व्यक्ति ने यह दृश्य देखा तो उससे श्रेष्ठ कोई और नहीं है। तो यहां हम देखते हैं कटाक्ष मोक्षम, अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, ध्यान से इस तस्वीर को देखिए कि भगवान श्री कृष्ण आगे जा रहे हैं लेकिन उनकी नजर आगे नहीं है, कहां है, थोड़ा साइड में है, पीछे की तरह, कहां, गोपियों की तरह है। और गोपियां क्या कर रही हैं, गोपियों श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को देख रही हैं। कैसे देख रहे हैं, मानो कि कृष्ण के सौंदर्य के अमृत का पान अपने आंखों से कर रही हैं। इसलिए यहां पर शब्द का इस्तेमाल प्रयोग किया गया है निपीतम, निपीतम दो शब्दों से बना हुआ है, नितरम और पीतम, पीतम मतलब पीना और नितरम मतलब जो बिना हिचकिचाए हुए पूरी तरह से हृदय से कर लेना चाहिए, तो नी पीतम, तो निपीतम मतलब कृष्ण भगवान का सौंदर्य ऐसा है जिसके लिए हर एक व्यक्ति को बिना हिचकिचाए हुए अपने आंखों से वो पान कर लेना चाहिए। और इस तरह से जैसे कि एक बहुत प्यासा व्यक्ति पानी पी लेता, अमृत को पान कर लेता है, वैसे गोपियां श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को देख रही हैं। और खास करके उस दृश्य को जब श्री कृष्ण अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम अपने प्रेम भरी आंखें गोपियों को सांत्वना देने के लिए दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूं शाम को, तो श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि जिनकी जो लोग अपनी आंखों को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं वो आंखें तो क्या वो तो मोर पंख के आंख के बराबर है। मोर पंख में भी जो चिन्ह होता है वो आंख के जैसे दिखता है ना, तो मोर पंख की आंखें हैं। तो जो अब मनुष्य होते हुए अपनी आंखों को कृष्ण का दर्शन करने के लिए नहीं इस्तेमाल करता, उसकी आंखें नहीं है वो तो आंखें नहीं बोलना चाहिए, केवल मोर पंख के जैसे आंखें हैं ना वैसे है। मोर पंख के अंदर जो आंखें होती हैं वो देख सकती है क्या? नहीं, नहीं होने के बराबर है। तो उसी प्रकार से किसी व्यक्ति की आंखें, जिनके कान हैं लेकिन वो कान श्री कृष्ण के गुणगान करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो कैसे कान है? जैसे कि सांप के सर में छेद, केवल छेद ही है बस, और कोई लाभ नहीं उनका। जिस व्यक्ति की जिह्वा है टंग, लेकिन श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करता उस जिह्वा से, तो ऐसा है मानो कि एक मेंढक का जिह्वा। मेंढक क्या करता है? केवल कौ 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 करते रहता है, व्यर्थ, कोई फायदा नहीं होता। जिस व्यक्ति के सर पे बहुत अच्छी पगड़ी है या बहुत अच्छा मुकुट है, मतलब बहुत बड़ा राजा होगा, कोई महाराजा होगा, लेकिन अपने सर को वो भगवान के सामने झुकाता नहीं है, तो वो मुकुट या वो पगड़ी ऐसे है जैसे एक डूबते हुए आदमी के सर के ऊपर बोझ। हाँ, तो जो आदमी डूब रहा है वैसी तकलीफ में है, नीचे जा रहा है पानी में, उसके ऊपर आप वजन भारी रख देंगे तो क्या होगा? बचेगा और जल्दी डूब जाएगा। तो इस तरह से जो व्यक्ति भगवान के सामने घमंड की वजह से सर झुकाना नहीं चाहते हैं और अपने आप को ऊंचा समझते हैं कि मेरे मुकुट है, मैं राजा हूं, ये हूं, तो यही सारी उपाधियां इत्यादि उसको डुबा देंगी भव सागर में, बारंबार उसे जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से आते रहना होगा। तो इस तरह से गोपियां यहां यह सुंदर दृश्य अपने मन में देख रही हैं, हालांकि श्री कृष्ण तो बहुत समय पहले वो वन में पहुंच चुके हैं। तो ये पहला मतलब है इस श्लोक का, जो कि साधारण मतलब है, जो एक बार पढ़ने से पता चलता है, लेकिन आचार्यों ने कई इनके अंदरूनी मतलब या अर्थ भी बताए हैं इस श्लोक के, बहुत सारे हैं। उनमें से केवल दो तीन अर्थ आज हम बोलने का प्रयास करेंगे कि इस श्लोक से और क्या अर्थ हमें निकाल सकते हैं या समझ सकते हैं। सुत यह शब्द का प्रयोग किया गया है। सुत यह मतलब दो पुत्र, न कृष्ण और बलराम। अब वैसे देखा जाए तो गोपियों का जो प्रेम है वो केवल श्री कृष्ण के प्रति है, तो यहां उन्होंने बलराम का नाम क्यों लिया है? क्योंकि वास्तव में वो तो कृष्ण का ही गुणगान करना चाहते हैं, कृष्ण का सौंदर्य ही देखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बलराम जी को बीच में लाया है, गोपों को बीच में लाया, गांवों को बीच में लाया, ताकि कोई बोले नहीं कि केवल कृष्ण का क्यों करते हो। अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाए, विरोध करे, नहीं, हम तो सब सुंदर है, गाय भी सुंदर है, बलराम जी, गोपगण, सारा वृंदावन सुंदर है, सब सुंदर है, लेकिन उनका टारगेट कहां है? कृष्णा। ये है टेढ़ा मेढ़ा बोलना, परोक्षवाद। उनका उद्देश्य कुछ है लेकिन बोलते कुछ और है, ताकि वो दोष उनको कोई नहीं, दोषी नहीं ठहराए। ये एक बात है। और दूसरी बात, यहां प्रयोग किया जाता है शब्द अनु, अनु विवेश यतोर। तो आचार्य बताते हैं कि इससे हम समझ सकते हैं अनु शब्द से कि वैसे उन्होंने चतुराई से बलराम जी को थोड़ा आगे भेज दिया, क्योंकि बलराम बड़े भाई हैं, बड़े भाई के सामने वो गोपियों को देख नहीं सकते, कटा अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम नहीं कर सकते, बड़े भाई साथ में है नहीं कर सकते, तो बड़े भाई के पीछे थोड़ा हल्का कदम लेने लगे, बलराम जी आगे आगे चलते गए, और चलते चलते वो प्राय आगे चल गए थे तो फिर कृष्ण भगवान अकेले रह गए, फिर अनुराग कटाक्ष मोक्षम, फिर आराम से वो देख सके। तो गोपियां इस श्लोक के माध्यम से कह रही हैं कि आंखों की परिपूर्णता केवल इस दृश्य को देखने में नहीं है, एक सर्वसाधारण दृष्टि, ये जो हमारे पिक्चर में आपको दिखाया अभी, केवल वो नहीं, लेकिन अकेले कृष्ण को देखना, ये सार है, और उस भावना से देखना जिस भावना से गोपियों ने देखा था। मतलब ये दृश्य, दूसरा अर्थ क्या निकला कि वास्तव में गोपियां केवल कृष्ण बलराम गोपियां गोपों को और गायों को नहीं देख रहे हैं, केवल कृष्ण को देख रहे हैं। और एक दृष्टि से देखा जाए तो अनुवेणु जुष्टम, जिन्होंने दोनों ने जो वेणु धारण किया है, आचार्य बताते हैं कि वास्तव में बलराम जी वेणु इतनी अच्छी तरह से नहीं बजाया करते थे, सारे ग्वाल बालों के पास वेणु हुआ करता था, लेकिन कृष्ण की तरह कोई नहीं वेणु बजा सकता था, बलराम भी नहीं। ये कृष्ण की ही विशेषता है। और बलराम की विशेषता है श्रृंग, हॉर्न, बाजा, वो बाजा बढ़िया बजाते थे। तो आचार्य कहते हैं कि जब ये वन में जाते थे तो बांसुरी केवल कृष्ण बजाते हैं, बलराम जी बाजा बजाते हैं। इसलिए जब गोपियां कहती हैं अनुवेणु जुष्टुम कि बांसुरी बजा रहे हैं, तो ये कृष्ण के ऊपर उंगली वो दिखा रहे हैं, बलराम जी के ऊपर नहीं। बलराम के प्रति उनकी थोड़ी आदर भावना है कि बलराम थोड़े बड़े भाई हैं, लेकिन वो माधुरी भाव उनको बलराम जी के प्रति नहीं है, कृष्ण के प्रति है। तो इस तरह से कई अर्थ आचार्यों ने कहे हैं, लेकिन समय नहीं है कि इन सारे अर्थों के ऊपर हम चर्चा करें। लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो गोपियों की भावना है सुखदेव गोस्वामी ने बाहर लाई है, ये तो अमृत है। और आचार्यों ने अमृत का मंथन और भी करके उसे और गाढ़ा अमृत निकाला है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। हर जैसे आचार्य इन श्लोकों को पढ़ते हैं, इनका तात्पर्य देते हैं, टीका करते हैं, तो ये श्लोक जो पहले से बहुत मधुर थे और अधिक मधुर होने लगते हैं। इस प्रकार से गोपियां हमेशा निपीतम कृष्ण भगवान के सुंदर मुख का दर्शन किया करती थी। जब वृंदावन छोड़कर भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस ने उनको बुलाया था मल्ल युद्ध के लिए, कंस मारना चाहते थे कृष्ण बलराम को। जब वो वहां पर आ गए जिस ठिकाने मल्ल युद्ध होना था, तो बहुत सारे लोगों ने उनको देखा अलग अलग दृष्टि से, और उनमें से मथुरा नगरी के जो महिलाएं थीं, स्त्री थीं, उन्होंने भी श्री कृष्ण और बलराम को देखा। और उस समय उन्होंने एक श्लोक कहा जो कि बहुत सुंदर है। गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम् लावण्य सारम समोर्ध्वम् अनन्य सिद्धम् दृग्भिः पिबन्त्य अनसवाभिनवं दुरापम् एकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। मथुरा के निवासी, खास करके वहां की स्त्रियां बोल रही हैं, गोप्यस तपह किम आचरन, ये जो गोपी गण हैं वृंदावन के, किम आचरन तपह, किस प्रकार का तपस्या उन्होंने किया होगा, यद अमुष्य रूपम, जिसके फल स्वरूप उनको भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुखारविंद दिखने में मिल रहा है। और कैसे देखते थे भगवान श्री कृष्ण का रूप, कैसे था, लावण्य सारम। लावण्य मतलब सौंदर्य संस्कृत में, हमारे हिंदी मराठी में भी ऐसे ही है लावण्य। और सारम मतलब श्री कृष्ण का रूप कैसे है, सौंदर्य का सार है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ब्यूटी। देखिए कितने सुंदर शब्दों में सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, लावण्य सारम असमौर्ध, ऐसा सौंदर्य जिससे अधिक सौंदर्य की बात तो दूर है, लेकिन उतना सौंदर्य भी किसी के लिए संभव नहीं है। अनन्य सिद्धिम, इसके अलावा और कोई सिद्धि नहीं है केवल सिवाय इनको देखना। और गोपियां न केवल देख रही थी, कैसे देख रही थी, दृग्भी पिबंती, पी रही थी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का अमृत। एकांत धाम यशस श्री ऐश्वरस्य, और ये भगवान का जो सौंदर्य है लावण्य सारम, वो धाम है किसके लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, और नाना प्रकार के सौंदर्यों के लिए, सबके लिए ये एक धाम है। तो मथुरा के निवासी भी गोपियों के जो भाग्य के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे तपस्या की होगी कि श्री कृष्ण के लावण्य सारम को वो पान करते हैं दिन भर और हम लोग नहीं देख पाते हैं, अब केवल देख रहे हैं, अब आए हैं कृष्ण पहली बार यहां मथुरा में। तो ये है गोपियों का स्वभाव और उनका सौभाग्य कि वो दिन भर कृष्ण को देखते थे। सुबह शाम तो कृष्ण को प्रत्यक्ष देखते थे बाहरी रूप से, और बाकी दिन में अपने हृदय में उनको दर्शन करते थे। इसलिए क्योंकि उनका प्रेम इतना तीव्र था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके इतने ऋणी हुए। ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर सकती थी। वो जो दिन है उनको बहुत लंबा लगता था और उनके लिए असहनीय हो जाता था। ये थी उनकी तीव्रता की प्रेम। इसलिए वो कहते हैं श्रीमद् भागवत में ही, अटति यद् भवान् अहनी काननम् त्रुटिर्युगायते त्वाम् अपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखम् चते जड़ उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। गोपियां कहती हैं, अटति जब जाते हैं, यद भवान जब आप, मतलब कृष्ण को बोल रही हैं, जब आप जाते हैं अहनी दिन के समय, काननम वन में जाते हैं, तो त्रुटि, त्रुटि मतलब एक क्षण, त्रुटि युगायते एक युग के बराबर लगता है, कई साल, एक क्षण हमें कई सालों के बराबर लगता है। त्वाम अपश्यताम, पश्यताम मतलब देखना, अपश्यताम मतलब जब हम नहीं देख सकते हैं। जब आप सुबह के समय वन में चले जाते हो और हम आपको देख नहीं सकते हैं, तो एक क्षण भी एक युग के बराबर प्रतीत होता है और हमें स्मरण आता है। श्री मुखम चते, आपका सुंदर मुख, कुटिल कुंतलम जिसके अलका, जिसके बाल उस मुख में आ रहे हैं, आपके काले घुंघराले बाल वहां पे सुंदर मुखारविंद में आ रहे हैं। इसलिए हम उस सृष्टिकर्ता को कोसते हैं। सृष्टिकर्ता मतलब कौन? बेचारे ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं। क्यों कोस रहे हैं? ब्रह्मा जी का क्या कसूर था? उनको जड़ कहते हैं, जड़ है, उनकी बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? पक्ष्मकृत, उन्होंने ये अपने आंखों के सामने पर्दा बना दिया, आईलिड पक्ष, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं बीच बीच में। वैसे तो आंख है केवल कृष्ण को देखने के लिए, तो 24 घंटे निरंतर देखना चाहिए। अब ये बीच में पलक आते हैं, पट 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 बंद होते हैं, तो हम देख नहीं सकते, 24 घंटे नहीं देख सकते, नॉन स्टॉप नहीं देख सकते। तो ये हमारे ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी गलती की है, प्लानिंग में, डिजाइन में बहुत गलती उनकी हो गई, ये पलक जो है ये बना दिए। इसलिए वो जड़, जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। तो ये है गोपियों की भावना। तो इस श्लोक में भी ऐसी भावना वो व्यक्त कर रहे हैं कि आंखों की परिपूर्णता है कि कृष्ण को देखते रहना। तात्पर्य इसका ये है कि गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए दो आंखें काफी नहीं है, हमें तो करोड़ों आंखें चाहिए श्री कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए। और ये सही बात है कि कृष्ण असीमित है, उनके आकर्षण में, उनके सौंदर्य में कोई सीमा नहीं है, और हम तो सीमित हैं, हम तो छोटे हैं, इसलिए हम असीमित को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? एक छोटे प्याले से आप सारे सागर का पानी भर सकते हैं क्या? उसी तरह से हमारी दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक जिह्वा है, कितना हम कृष्ण के सौंदर्य को देख सकेंगे, वर्णन कर सकेंगे, उनका गुणगान सुन सकेंगे, कितना कर सकते हैं? हजारों करोड़ों कान चाहिए। तो कृष्ण भगवान से जो भी कुछ संबंधित है उसको सही तरह से, उसका स्वाद लेने के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, असमर्थ हैं, हम नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से, हम बहुत कम पड़ जाते हैं। इसलिए गोपियां जैसे ज्यादा से ज्यादा आंख मांग रही हैं कृष्ण को देखने के लिए, वैसे रूप गोस्वामी ने ज्यादा से ज्यादा जिह्वा और कान मांगे हैं उनका पवित्र नाम बोलने के लिए और सुनने के लिए। तुंडे तांडवणी रतिम विटनुते लब्धे तुंड तुंडावली लब्धे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण वर्ण द्वय इति, जब ये कृष्ण ये दो शब्दों का उच्चारण मैं करता हूं तो मैं क्या चाहता हूं? तुंडावली लब्धे, कि मेरे बहुत सारे तुंड मतलब मुखार मुख हो जाए। एक मुख से काम नहीं चलता है, क्योंकि कृष्ण इस दोनों में इतना अमृत भरा हुआ है, इन दो अक्षरों में, कि एक जिह्वा मेरे लिए बहुत कम पड़ रहा है, मुझे बहुत सारे मुख चाहिए, बहुत सारे जिह्वा चाहिए कृष्ण 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 बोलने के लिए। क्योंकि इन दो शब्दों में दो अक्षरों में इतना अमृत भरा हुआ है। और फिर कर्ण क्रोड, मेरे जो कर्ण है मुझे करोड़ों चाहिए सुनने के लिए, क्योंकि अमृत से भरा भरना चाहता हूं मेरे कानों को। और दो कान ये अमृत भरने के लिए काफी नहीं है, अमृत का भंडार उत्पन्न हो गया है कृष्ण कहने से, और ये केवल दो कानों में फिट नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे कान चाहिए। तो यहां गोपियां कह रही हैं हमको करोड़ों आंखें चाहिए कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए। तो ये है श्री कृष्ण, और ये है श्री कृष्ण भावना, श्री कृष्ण भक्ति, कितनी ऊंची चीज है। लेकिन दुर्भाग्य से सारे संसार में लोगों को ये अमृत नहीं मिल रहा है। तो हमें इस अमृत का पान करने के लिए गोपियों के पद चिन्हों में चलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान और उनका गुणगान, उनके भक्तों का गुणगान श्रीमद् भागवत में जैसे आता है, वैसे ध्यान से श्रवण करके, पढ़ के, शरीर के तकलीफों को सहन करके, हमारे संसार के कष्टों को सहन करके, ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्तों के संग में आकर ये हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन में भाग लेकर हम भी इस रस का स्वाद कर पाएंगे। फिर भी भगवान की कृपा से एक दिन ऐसे आ सकता है जब हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमारे लिए दो आंखें काफी नहीं है, हमको भी आपका दर्शन करने के लिए करोड़ों आंखें चाहिए, आपका नाम लेने के लिए एक जिह्वा काफी नहीं है, हमें करोड़ों जिह्वा चाहिए, और आपके नाम सुनने के लिए दो कान काफी नहीं है, हमें करोड़ों कान चाहिए। ये सिद्धि के लिए हमें गोपियों के चरणों में, चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, कल जाकर अगले श्लोक, अगले दो तीन श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे कि गोपियां अगले दलों में, अन्य दलों में क्या बोल रहे हैं। तो आपके कोई प्रश्न है? एक जो माधुर्य बात कृष्ण के पास है जो नारायण के पास नहीं है, वो है लीला माधुरी। मतलब कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के साथ में लीला करते हैं, लेकिन नारायण से सारे अवतार आते हैं और इन अवतारों में भगवान ऐसी लीला करते हैं अवश्य, जैसे कि श्री राम की लीला में हुआ, लेकिन उनमें इतना मिठास नहीं है जितना कि कृष्ण के लीला में है। कृष्ण की लीला में जो मिठास है, जो माधुर्य है, वो अतुल्य है, किसी भी अन्य भगवान के अवतार की लीलाओं से नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अवतारी है, अवतार नहीं, अवतारों के ही उद्गम है वो। ठीक है, और कोई प्रश्न?